یہ موضوع کہ جو در حقیقت آپ اپنی گفتگو کے لیے منتخب کرتے ہیں اور اسے چنتے ہیں، یہ بہت بنیادی کردار کا حامل ہوتا ہے، اس لیے کہ جو موضوع آپ نے چنا ہے وہ القا کیا جائے گا، وہ اپنے مخاطب کے ذہن میں ڈالا جائے گا، اس کی روش کا انتخاب، اس کے لیے باڈی لینگویج اور اس کے لیے علمی مواد، ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے جو آپ کے موضوع کے انتخاب کے ساتھ ساتھ ضروری ہیں۔ لیکن چونکہ ہمارا موضوع جو اس گفتگو کا ہے وہ مجالس کے عنوانات ہیں، مجالس کے موضوعات ہیں، موضوعات یعنی پہلے سے آپ در حقیقت اسے مشخص کریں گے، مثلا یہی گفتگو جو ہم کر رہے ہیں کہ مجالس کے اخلاقی موضوعات، تو اس کے لیے عرض کروں یہ پہلے سے وضع کیا گیا ہے۔ وضع عربی میں واو، واد اور عین رکھنے کو کہا جاتا ہے، اردو میں وضع قطع کے ساتھ آتا ہے، اس کی وضع، اس کی حالت، اس کی کیفیت ایسی ہے، لیکن وضع عربی زبان میں در حقیقت رکھنے کو کہا جاتا ہے، موضوع جسے رکھا گیا ہو، جسے مقرر کیا گیا ہو، جسے پہلے سے مشخص کیا گیا ہو۔ بس اس بنا پر لازم و ضروری ہے تمام ذاکرات کے لیے اور تمام مبلغین کے لیے کہ وہ پہلے سے اپنے سامعین کا انتخاب کریں اور ان سامعین تک بات پہنچانے کے لیے ان کی ذہنی سطح اور علمی سطح کا ایک اندازہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، تاکہ آپ اسی سے مناسبت رکھتے ہوئے اپنے الفاظ، اپنے موضوعات، اپنے استعارے، اپنے تعبیرات پیش کر سکیں۔ اور اگر یہ چیز اور یہ مہارت ہمیں حاصل ہو جائے، یہ مہارت آپ کو عملی زندگی میں اور خطابت اور تبلیغ زندگی میں بہت فائدہ مند آپ کے لیے ثابت ہوگی۔ اب آتے ہیں کہ مجالس کو کن موضوعات پر مشتمل ہونا چاہیے، اس کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ ایک در حقیقت آپ کی وقتی ضرورت ہے اور ایک کلی ضرورت ہے۔ وقتی ضرورت ہماری وہ ہمارے معروضی اور سیاسی حالات ہیں، اجتماعی حالات ہیں، قوم کے داخلی اور خارجی حالات ہیں کہ جن پہ ہمیں گفتگو کرنی چاہیے۔ مثلا ابھی ایک مرحلہ ہے جو بنیاد اسلام ایک بل پیش کیا گیا پنجاب اسمبلی میں، ٹھیک ہے نا، ایک وقتی طور پر ہے، یا اسی طریقے سے عالمی سطح پر کچھ ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں، یا پاکستان میں تشیع کے حوالے سے کچھ ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں کہ جن کو ایڈریس کرنا ضروری ہے آنے والے وقتوں میں، یا مثلا خود یہ کووڈ 19 کرونا کا مسئلہ، یہ اس کو مثلا ہم وقتی ضرورت کہہ سکتے ہیں کہ ابھی مثلا ہمیں اس چیز پہ بولنا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے کلی ضرورت ہے، کلی ضرورت ان معنی میں کہ یعنی عقائد کو بیان کیا جائے، اخلاقیات کو بیان کیا جائے، سیاسیات کو بیان کیا جائے، اس قسم کی جو موضوعات ہیں وہ ہماری کلی ضرورت ہیں جو تربیت سے متعلق ہوتے ہیں، تربیت سے مربوط ہوتے ہیں۔ بس دونوں پہلوؤں کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے، اور جب تک ایک محق و معلومات آپ کے پاس نہ ہو کسی موضوع میں قدم نہ بڑھا۔ ہوتا یہ کہ سرسری معلومات جو ہم نے واٹس ایپ کے گروپ سے حاصل کی اور اسی کو ہم نے آگے بڑھا دیا، پتہ چلا کہ وہ یا ناقص تھیں یا مثلا بے بنیاد تھیں یا ان میں جھوٹ تھا یا ان میں صداقت و سچائی نہیں تھی۔ تو ایک کما حق و معلومات ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں اگر آپ کو فارسی آتی تو فارسی ویب سائٹ کی طرف رجوع کریں، اور اگر آپ کو اردو آتی ہے تو آپ تبیان اور اسلام ٹائمز کی جانب رجوع کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی ویب سائٹس آپ کو اردو میں مل جائیں گی، شفقنا ہے، القص ہے، یہ ویب سائٹ بھی آپ کو اردو میں مل سکتی ہے۔ اس بنا پر جو وقتی ضرورت ہے اس چیز کو مد نظر رکھا جائے، اس کو ضرور ایڈریس کیا جائے۔ مثال کے طور پر ہماری یہاں جو ایسے حالات پیدا ہو گئے کووڈ 19 کی وجہ سے، اس میں ہمیں کس طریقے سے عزاداری کرنی چاہیے، کس طریقے سے اپنی عزاداری کو بچا کے رکھنا چاہیے، یہ سارے وہ وقتی موضوعات ہیں جن پر ہمیں گفتگو کرنی چاہیے۔ اب آتے ہیں کلی موضوعات، جن کو کہیں جو ہمارا موضوع ہے اخلاقی موضوعات، اور وہ در حقیقت ایسے ہیں کہ جن کی ہمیں ضرورت ہے۔ اخلاقی موضوعات کی ضرورت یوں ہے کہ انسان کو एक रहनुमा की, एक वाजे की, एक वाइज की, एक नासिह की ज़रूरत होती है जो उसे नसीहत कर सके। याद रखिएगा, आपकी मजलिस ना सिर्फ वाहवा पर मुश्तमिल हो कि आपके फ़ज़ाइल बयान करें और कोई उसमें मुस्बत नुक्ता और पैगाम ना हो, या आपकी मजलिस जो सिर्फ वादो नसीहत का अंबार हो, लगा दिया गया हो, और उसमें जो है वो फ़ज़ाइल के मौजूआत ना हो, या अकायदी मौजूआत ना हो, या इस्लाम के समाजी मौजूआत ना हो, नहीं, तमाम चीज़ों को वो कोशिश करें कि उस मौजू के तहत लाने की कोशिश करें। उसमें अखलाकी मौजूआत भी आ जाने चाहिए, उसमें अकायदी मौजूआत भी आ जाने चाहिए, उसमें खुसूसन खुसूसन मैं आप मुबल्लिगीन और ज़ाकरात की खिदमत में अर्ज़ करूँ कि शुबहात का जवाब बहुत ज़रूरी है। कि अफसोस कि हमें मौका नहीं मिल सका कि हम शुबहात पर मुश्तमिल जो है वो कोई काम करते और उसको जो है वो आपके सामने इंटरनेट पे डालते ताकि आप उससे इस्तेफादा करते। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में अगर हुआ तो हमारे पेज से या हमारे जो यूट्यूब है वहाँ पर आपको वो लिंक मिल सकेगा इंशाल्लाह अनकरीब में। कोशिश करेंगे आइए मुहर्रम से साथ साथ कुछ ना कुछ जो है वो आपको इस किस्म के मौजूद देते रहें कि जो शुबहात के मौजू पर आते हैं। शुबहात का इजाला बहुत ज़रूरी है। मैंने बताया कि समाजी मौजूद हैं, अखलाकी मौजूद हैं। अखलाकी मौजूद की अपनी अहमियत है, लेकिन अखलाकी मौजूद अखलाकी मौजू कहकर कभी भी जो है वो आप उनको नसीहत ना करें कि आइए मैं आपको नसीहत करता हूँ और हम आपको नसीहत करते हैं, अब अखलाकी एक हदीस सुनाते हैं, एक रिवायत सुनाते हैं, नहीं, गैर महसूस तरीके से ये तबलीग होनी चाहिए। इसलिए कि वो तबलीग जो गैर महसूस तरीके से हो, ठीक है ना, कहीं कहीं डायरेक्ट सुनाना चाहिए, कहना चाहिए, लेकिन वो काम, वो तबलीग जो प्यार मोहब्बत से इशारों किनायों में हो, वो जो है आपको आपके मथे नज़र होनी चाहिए। इसलिए आप लोग इतने मैच्योर हो गए कि वो इशारों किनायों में की जाने वाली बात को समझते हैं। बस इस बिना पर आप अगर इशारों किनायों में कोई बात करेंगे तो लोग उसको समझते हैं, ऐसे बात नहीं है, लोगों का एक शऊर जो है वो बुलंद हुआ है। बस अखलाकी मौजूआत जो है ना वो हमारी ज़रूरत है और उनको एक ऐसे अच्छे शुस्तरुख्ता अंदाज से, प्यारे अंदाज से, मीठे अंदाज से होना चाहिए। उस सिलसिले में जो तरीक़ा है अखलाकी मौजूआत का कि उस मौजू से मुनासिबत रखने वाली कोई आयत और तफसीर सूरह नूर या तफसीर अलमीज़ान या तफसीर नमूना और इसी जैसी दूसरी तफासीर, मुस्तनद तफासीर जो उर्दू ज़बान में मौजूद हैं, उनसे कुछ अखलाकी नुकात, उस तफसीरी नुकात उसको बयान किया जाए। मीज़ानुल हिकमा का तर्जुमा आपके पास मौजूद है, बहुत सारी किताबों जो हैं वो उर्दू में, हसनुल अक़वाल अभी बाबुल इल्म दारुल तहक़ीक़ बाबुल इल्म में छापी है, मवाइदुल अददिया के नाम से जो आयतुल्लाह मिश्की ने ग़ालिबन लिखी थी वो तर्जुमा होके आ गई है, वो दार बाबुलिन दार तहकीक से ली जा सकती है। और अगर हम ये दरख्वास्त करें आपका मकतब तो मौलाना से हम दरख्वास्त करें कि वो मुबल्लिगात के लिए भी एक एक एजाजी कापी दें तो वो बहुत मददगार साबित हो सकती है अहादीस के सिलसिले में। चुनाचा ये बात ज़हन में रहे, अखलाकी जो किस्से हैं उनको भी जो है वो आप मद्देनजर रखें। लेकिन मैं सब ये कह रहा हूँ कि ये आप ये नहीं कहेंगे मतलब मेरी मजलिस के दीन से एक समाजियत है, अखलाकियत है, सियासियत मसला है, नहीं, इसी तरह गैर महसूस तरीक़े से ये सारे काम होने चाहिए। और लिंक देना आना चाहिए आपको, आप कैसे लिंक देते हैं, आप कैसे इंटरलिंक करते हैं, आप कैसे जोड़ते हैं, ये एक जुमला होता है जो आपको इस वादी से इस वादी लेकर आता है। वो एक जुमला जो है ना वो कनेक्टिंग ब्रिज होता है जो सामने के जहन को उस दुनिया और उस फेज से लाकर इस दुनिया और इस फेज में ले आता है। उस जुमले का इंतखाब, उस मौजू का इंतखाब, उस जगह का इंतखाब बहुत ज़रूरी होता है। लिहाजा और ये तजर्बे से आता है, ठीक है ना, ये सुनने से आता है, ये देखने से आता है, ये बड़े खुतबा को आप देखेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरीके से जो है वो एक लिंक दिया जाता है, इंटरलिंक किया जाता है, किस तरह वसल और जोड़ा जाता है। तो उसमें अखलाकी मौजूद, अखलाकी कस्से भी होने चाहिए, लेकिन ये सारे काम जो है ना वो इतने गैर महसूस तरीके से होने चाहिए कि जिसमें सामने वाले को अंदाज़ा ना हो। यानी आज की मार्केटिंग दुनिया का उसूल ये होता है कि आप मार्केटिंग करें और सामने वाले को यही ना पता चले कि आप अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं। कामयाब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वही है कि सामने वाले को इल्म ही ना हो कि आप अपनी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। और ये थोड़ी सी शायद मनफी हो, यहाँ पे हम कोई भी चीज़ बेच नहीं रहे, लेकिन हम दर हकीकत चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बात लोगों को अपील करें, उनके ज़हन व क़ल्ब को टच करें। तो हमें अपनी बात को ऐसे पेश करना है कि वो अपील कर सके। और ये दहरी बात है कि हर शख्स का अंदाज अलग अलग होता है, हर शख्स के कहने का उसलूब जुदा होता है, हर शख्स कहने की जो सलाहियत होती है वो दूसरे से मुमताज़ करती है उसे। इस बना पर आपकी खिदमत अर्ज करूँ कि ये तजर्बे से आती है, और फिर मैं कहूँगा कि ये सुनने से आती है, ये देखने से आती है, ये तजर्बे से आती है। अब आते हैं उन अखलाकी मौजूआत की जानिब जिसका मुशख्खस करना और जिसका तायुन हमारे लिए ज़रूरी है। उसमें मैं फिर वही कहूँगा कि कुल्ली मौजूआत हैं और जुज़ी मौजूआत हैं, वक्ती मौजूआत हैं। उनके लिए आपको अपनी जो सीनियर्स हैं उनसे रब्ता करना चाहिए, जिन उलमा से आप मरबूत रहे हैं उनसे रब्ता करना चाहिए कि हम किन अखलाकी मौजूआत को वक्ती तौर पर जो है वक्ती उनवानात के तहत उसको बयान करें। और आपस में एक इंटरलिंक होना चाहिए आपका कि जिसमें आप एक दूसरे से तबादला ख्याल कर सकें या मुबाहसा कर सकें या आपस में उस पर बहस कर सकें। याद रखिएगा मजलिस वही कामयाब है जो पहले से मुताला करके की जाए, उसके मतालिब को आप लिखें। मुझे याद है कि अभी 10 साल तकरीबन 8 साल लास्ट जितनी भी मजालिस है उन सब के मौजूद मेरे पास खुलासे के तौर पर मौजूद है। तो उसको लिखें, उस पर अपनी सीनियर से और अपने जूनियर से मुबाहसा करें, यानी उसे बयान करें। यानी 5-10 मिनट आप सुनाएं, वो 5-10 मिनट वो सुनाए। अच्छा, अब होता क्या है, अरे भाई वो हमारा मौजू ले जाएगा, अरे भाई वो हमारी चीटिंग कर जाएगा, कोई मसला नहीं है। इल्म किसी की मीरास थोड़ी है, अगर उसने बयान कर दिया हो सकता है कि उसकी बात में ज़्यादा वजन हो सकता है, उसका खलूस ज़्यादा हो सकता है कि उससे ज़्यादा तबलीग हो सके। आयतुल्लाह मोहसिन क़रादी हमारे उस्ताद तफ़सीर बयान करते हैं कि एक शख्स था बहुत आलिम फाज़िल और बहुत मुशगाफी करने वाला, बाल की खाल उतारने वाला, बहुत इल्मी था। उसने एक बहुत अच्छी तहकीक लिखी और तो हमारे उस्ताद अदर मोहसिन क़रादी ने कहा कि ये तहकीक हमें दे दो ताकि हम इसको लोगों के सामने बयान करें। मैं टेलीविजन पे जाता हूँ, मैं मुझे हज़ारों लोग सुनते हैं, उसने कहा नहीं जनाब, ये तो तहकीक मेरी है, मैं ही इसको बोलूँगा और मैं ही इसको लिखूँगा, मेरे नाम से छपेगी। फैजाने गिरा में क्या हुआ, उस शख्स का एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया, उसकी तहकीक उसका इल्म उसके साथ ख़त्म हो गया। कितने अफसोस की बात है, वो इल्म जो ज़ाहिर ना हो सके, वो इल्म जो माशरे के काम ना आ सके। लिहाजा इस बात से मत डरिएगा कि वो हमारी कॉपी कर लेगा, वो हमारी चीटिंग कर लेगा, वो हमें मिसाल के तौर पर हमारी बात को कहीं कोट कर देगा। कोट कर देगा तो कर देगा, क्या हो सकता है कि आप के कहने से वो असर नहीं होता कि जो दूसरे के कहने से असर हो जाए। लिहाजा इस बात से खाते नज़र रखिएगा, और अगर बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं तो की पॉइंट्स अपने पास रखें और जो है आपकी खिदमत में अर्ज करूँ कि दूसरी चीज़ें आप उनको दे सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आपको वो है कि जाए मेरे नाम से होना चाहिए, अव्वल तो ये कोई दलील नहीं बनती आप ही कि मेरे नाम से होना चाहिए, मैं मजलिस पढ़ूँगी, नहीं। तो हम लोग जो मजलिस पढ़ते हैं आपको क्या ख्याल है कि हम बताऊँ कोई आसमान से वही मंजिल होती है, आयत नादिल होती है, नहीं। ये उलमा की बातें सुनते हैं, ये किताबें पढ़ते हैं, उलमा को देखते हैं, सुनते हैं, कोई नुक्ता आ गया उसको लिख लिया, कोई बात क्लिक कर गया उसको लिख ली, उसको पॉलिश करते हैं। और अपने साथ एक पेपर पेन लिखें, या अब तो मोबाइल में नोट पैड होता है उसमें फ़ौरन से वो नुक्ता लिख लिया करें, सवाल आए सवाल लिख लिया करें ताकि फरार निकले, सेव कर लें उसको, बाद में फिर जहां जिससे मौका मिले उससे पूछ सकें या उस नुक्ते को निकाल के जो है वो आप उसकी पॉलिश करके उसको उसमें मज़ीद निखार पैदा कर सकते हैं। बस घबराइए नहीं, ठीक है ना। मुबाहसा ज़रूरी है, आपका कोई ऐसा ग्रुप होना चाहिए एज वाइज के लिहाज से जिसमें आप एक दूसरे से शेयर कर सकें, वो पुख्ता हो सके, मजलिस वो अशरा पुख्ता हो सके। फिर अगर आप अशरा ले रहे हैं तो अशरे में किस तरीके से आपने उसको डिवाइड करना है उन मौजूआत को, ये भी एक क्वेश्चन है। उसके इनफरादी पहलू, उसका मसलन उसका लुगवी पहलू, उसका इस्तलाही पहलू, ठीक है ना, फिर उसके लवाजमात क्या हैं, उसको कैसे उर्दू अदब में देखा जाता है, फिर आते हैं जनाब इसका पस मंज़र क्या है, इसका समाजी पहलू क्या है, इसका सियासी पहलू क्या है, इसका अखलाकी पहलू क्या है, ये सब पहलू उसको बयान करने जाना चाहिए। लेकिन ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि खालिस्तन, ऐसा नहीं कि हम आए और खालिस्तन इल्मी अखलाकी और फलसफी बहस जो है ना वो सामईन और आज़ादारान आबा अब्दुल्ला हुसैन अलैहिस्सलाम के सर पर थोप दें, नहीं कभी नहीं, बल्कि उनकी ज़हनी सतह के मुताबिक जो है ये काम किया जाए। अब जो जूनियर हमारी खारान होती हैं, ज़ाकरात होती हैं, वो उनमें तजर्बे की कमी होती है, वो मनोन ऐसे ही जैसे सुनते कॉपी पेस्ट कर देते हैं, नहीं वो फिर बोरियत का सबब बनता है और वो लोग कहते हैं जरा बस ये तो इंजेक्शन पर इंजेक्शन लगा के चले गए, ये तो दर्स में दर्स दे के चले गए, मतलब एक जो तासुर मिलता है वो ये होता है। हालांकि दर्स को इतनी बुरी चीज, मजलिस दर्स ही का नाम है, कुछ लेने का नाम है। दर्स किसे कहते हैं, दर्स वो दर हकीकत तालीम है कि जो आप मकतब में जाकर, इंस्टीट्यूट में जाकर, कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी में जाकर हासिल करते हैं, ये दर्स है आपका जो आपको दिया गया ताकि आप कुछ गेन कर सकें। मजलिस एक दर्स है, ठीक है ना, कि जिससे आप कुछ गेन करते हैं, एक यूनिवर्सिटी है जहाँ से आप कुछ नॉलेज गेन कर रहे हैं, ले रहे हैं। लेकिन इस्तलाहन जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है वो ये है कि जनाब दर्स मजलिस की अच्छी थी, दर्सी थी, दर्सी थी, यानी उसमें कोई फजाइली पहलू नहीं था, कोई अखलाकी पहलू नहीं था और इस किस्म के कोई दूसरे इशारे मौजूद नहीं थे। तो ये भी ज़रूरी होता है कि मजलिस को गर्म रखने के लिए और सामाइन को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए, अब ये नफ्सियात से मरबूत है कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका वे ऑफ टीचिंग है, वे ऑफ खिताबत है, वो कैसा होना चाहिए। अगला मौजू अगर कभी मौका मिला तो उस पर गुफ्तगू करेंगे कि किस तरीके से होना चाहिए। अब लोग कहते हैं जनाब हम मजलिस पढ़ना चाहते हैं तो कैसे, कहाँ से, किस तरह से शुरू करें, बहरहाल ये अलग मौजू है। अखलाकी मौजूआत का तायुन बहुत ज़रूरी है और मैं जो सीनियर खवान की क्लास ले रहा था उसमें तफसीर मौजू के उनवान से हमने सिलसिला शुरू किया, तो 10-12-15 मौजू हम ज़ेर बहस ला चुके हैं और वो तकरीबन तमाम ही इंटरनेट पर हमारी यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं सादर रदर तकवी के नाम से, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और मज़ीद जो है वो इसका सिलसिला जारी है। अखलाकी मौजूआत जो हैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, तरबियती मौजूआत जिनको हम कह सकते हैं, वो उसकी ज़रूरत इसलिए पेश आ रही है कि हर शख्स को ज़रूरत है कि उसको कुछ ना कुछ गाइड किया जाए, उसे बताया जाए, और अगर उसे बताया नहीं जाएगा तो फिर आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि उसके लिए जो है वो ज़िंदगी को संभालना जो है ना वो मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास जो किताब है उसमें तकरीबन 108 मौजूआत अलग हैं और आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ 150 मौजूआत हैं। 150 मौजूआत में से तकरीबन आप ये समझे कि 45 से लेकर 105-50-60 मौजूआत अखलाकी मौजूआत तकरीबन हमारे पास, तकरीबन इसमें आदाब मुआशरत है, ज़िंदगी कैसे बदर की जाए, मैं सिर्फ हेडलाइन आपको बता रहा हूँ। आदाब मुजालसत है, उठने बैठने का तरीक़ा, नसीहत करने का अंदाज़ क्या होना चाहिए, ईमान के आसार और अमल सौले, तकवा, मुत्तकीन के फ़ज़ाइल और कमालात, बुर्दबारी, मानवी तहारत, मानवी नेमतें, खुदावंद आलम की मोहब्बत, हुब्बेलही, इखलास, यकीन, तवक्कुल, तस्लीम, खौफ और रजा, सब्र, ज़िक्र खुदावंद, दुआ, इस्तग़फ़ार, ज़ुहद, रहमत इलाही, तौबा, तवाज़ु, इनकिसारी, तकब्बुर, गुरूर, बात करने के आदाब, ज़बान के गुनाह और उसकी आफतें, मेहमान बुलाने के आदाब यानी मेज़बान बनने के आदाब, खरीद व फरोख, दोस्ती किन से करें, ये इस पर तकरीबन हमने 3 मजालिस पढ़ी थी, लोगों ने काफ़ी उसको पसंद किया था और बड़ा यूनिक टॉपिक था ये। एहसान और नेकी कारी, नेक काम करना, वालदैन के साथ एहसान, औलाद, बीवी और शौहर की खिदमत, हमसाया, यतीम, सिला रहम, शुक्र नेमत इलाही, खुदा की ख़ास नेमतों को याद करना, उम्र, مومن اور غیر مومن کے دل کا فرق، سچائی جھوٹ، صحیح اور غلط، خوشیاں آثار گناہ، ہوائے نفس اور خواہشات نفس کی پیروی کے آثار، فضول خرچ اور اسراف، غیبت، حسد، حرص، لالچ، غرور، عیب جوئی، دنیا کی ستائش اور دنیا کی مذمت، امانت، خیانت، عہد، قرآن میں تمثیل، لوگوں کی خدمت اور عقلی تربیت۔ یہ تقریباً 55-60 موضوعات بنتے ہیں کہ جن کو جو ہے وہ بیان ہونا چاہیے۔ مثلاً یہاں پر میں دوستی کا ذکر کروں گا کہ دوستی جو ہے وہ اس کے لیے کیا ہے۔ دوستی قرآن کریم میں کس طریقے سے بیان کی گئی ہے، مختلف موضوعات اور مختلف آیات یہاں پر درج ہیں۔ ہم نے کافی کوشش کی کہ ہمیں وقت مل سکے تاکہ اس کتاب کا ترجمہ کیا جا سکے، کہ جس میں 150 موضوعات ہیں، جس میں قرآن بھی ہے، قرآن کی ایک آیت نہیں ہر موضوع میں، 10-12 آیات ہیں اور 10-12 روایات ہیں، یعنی اہل بیت اور قرآن ساتھ ساتھ ہیں۔ ہر موضوع میں تقریباً 10 آیات کہیں کم و بیش ہیں اور اتنی ہی احادیث موجود ہیں۔ بہت اچھی کتاب ہے اور ہمارے استاد جناب حضرت السلام علیہ وسلم اکبر دہقان صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور انہوں نے جو ہے وہ خود ہدیہ کی تھی۔ تو یہاں پہ مثلا دوستی کی جب بات آتی ہے تو یہ جو جتنی بھی انہوں نے کتنی انہوں نے یہاں دی ہیں، تقریباً انہوں نے یہاں پہ 7 جو ہے وہ آیات پیش کی اور ہر آیت میں 10 نکات موجود ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ان آیات کی تفسیر کو دیکھ کے جائیں، آپ 2-3 تفسیریں میں نے بتائی ہیں، ان تفسیروں کو دیکھ کے جائیں، اور اگر آپ کو فارسی آتی ہے تو فارسی جو ہے وہ تفسیر دیکھی جائے۔ اور ایک اور میں آپ کو گزارش کروں گا اور آپ کی جو مینیجنگ ٹیم ہے ان کو بھی کہ آپ کے لیے فارسی کلاس کا انتظام کرے۔ فارسی اگر آپ کو آ گئی تو آپ کا ہاتھ بہت کھل جائے گا، یاد رکھیے فارسی زبان انقلاب ہے، زبان اسلام۔ عربی میں ٹائم لگتا ہے، اصول تو عربی سیکھیں، لیکن اگر عربی نہیں سیکھ سکتے تو کم سے کم مفاہیم کا کورس جو ہے وہ آپ کے یہاں ہونا چاہیے۔ مفاہیم و قرآن جو ادارہ تنزیل لاہور نے 3 کتابیں شائع کی ہیں وہ ضرور کریں، یعنی واجب ہے آپ پر ذاکرات کے لیے، واجب ہے، اوجب الواجبات۔ اور فارسی زبان اس کو برنامے میں رکھیں تاکہ جو ہے آپ عربی سے شدھ بدھ ہو سکے اور فارسی سے آپ کو نزدیکی ہو سکے، تاکہ آپ جو ہیں وہ کتابیں پڑھ سکیں، دیکھ سکیں، ریسرچ کر سکیں۔ یہ میں خصوصاً جو ہماری چھوٹی بہنیں ہیں ان کی خدمت میں عرض کروں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ لوگ جو انٹر میں ہیں اور فرسٹ ایئر میں ہیں اور بی کام میں ہیں، آپ لوگ مینج کر سکتے ہیں اپنی اس لائف کے ساتھ۔ 1-1.5 سال میں ایک اچھی خاصی فارسی آپ کو کتابی فارسی آ سکتی ہے، پھر لسننگ سے اور بولنے سے جو ہے وہ اس میں نکھار پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ 2 چیزیں، مفاہیم قرآن کا کورس اور فارسی، یہ اوجب الواجبات ہیں آپ کے لیے، اس سے کم پہ تو بات ہی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ہر موضوع پہ جو ہے تقریباً میں نے بتایا کہ یہاں 8 کے 10 کے 7 اسلام کے آیات، خدا سے دوستی، خدا والوں سے دوستی جو خدا سے دوستی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم خدا کے دوست ہیں، مومنوں سے دوستی، کون سی دوستی سے منع کیا گیا ہے، کون سی دوستی نقصان دہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں 2-3 آیتیں موجود ہیں۔ جو دوست گمراہ کرنے والے ہیں وہ پشیمانی کا موجب بنیں گے روز قیامت، اس کے متعلق مثلا آیت موجود ہے۔ وہی دوستی کام دے گی کہ جو تقویٰ کی بنیاد پر ہوگی۔ اور پھر یعنی روایات کے ذریعے سے آپ جو ہیں اس کی مدد لے سکتی ہے۔ مثلا یہاں پہ تقریباً انہوں نے 16 موضوعات دیے ہیں اور ہر موضوع میں جو ہے وہ مختلف موضوعات نکل سکتی ہیں، اس کی فہرست میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ معیار دوستی بر اساس تقویٰ، دوستی کا اعلان کرنا، दोस्त से शोखी और जिदाल, लड़ाई झगड़ा मत करो। पुराने दोस्तों को बचा के रखो। हकीकी दोस्त कौन है? अपने दोस्त का नामो निशान, उसका पता तुम्हें मालूम होना चाहिए। मादा परस दोस्तों से इज्तनाब करो। दोस्त की इज्जत करो, दोस्ती की हिफाजत करो। बेहतरीन दोस्त की सिफात क्या है? दोस्त को इंतखाब करने की सिफात क्या है? क्या मायार है? नाअहल और ख़राब दोस्तों से, नाअहल और ख़राब लोगों से दोस्ती से परहेज करने का हुक्म है। अपने दोस्त को पहचानने का क्या तरीका है? उसकी दोस्ती की निशानी क्या है? अलामत क्या है? बदतरीन दोस्त कौन सा है? ऐसे दोस्त से परहेज करो कि जो तुम्हारे ऐबों को टटोलता है, लोगों के ऐबों को टटोलता है। अभी तो क्योंकि इनमें खुद एक एक हदीस जो है उसमें एक एक हदीस मौजूद है। मैंने ये एक एक तो मैं कह रहा हूँ, शायद यूँ कहूँ कि अशरे मौजूद हैं इसमें अगर गुफ्तगू की जाए। बज़ाहिर छोटा सा एक जुमला है वहाँ का। तो आपकी खिदमत में कहूँ कि इस तरीके से ये अख़लाक़ी मौजूआत हैं, और भी मौजूद हो सकते हैं। मैंने अर्ज़ किया कि आप किताब उठाएंगे, मेरे पास तो अरबी में है, आपको उर्दू में मिल जाएगी। इसका नाम है मीज़ान उल हिकमा, मीज़ान उल हिकमा उर्दू में मिल जाएगी आपको। और जो गालिबन लाहौर की कौन सी कंपनी है जिन्होंने काफ़ी सस्ती किताबें जो हैं वो पैकेज ऐलान किया है देने का, वहाँ से भी लिया जा सकता है। काफ़ी किताबें आपको तफसील की मिल सकती हैं। तो ये वो चीज़ें हैं, वो नुकात हैं। और मुझे नहीं पता कि इसमें सवालात का भी कोई हिस्सा होता है या नहीं होता। उर्दू की किताबें तो मैं चूँकि पढ़ता नहीं हूँ, इससे मुझे अंदाज़ा नहीं है कि उर्दू की कौन सी किताबें अच्छी हैं अखलाकी मौजूआत पर। मुझे इल्म ही नहीं है। अच्छा, अभी अभी 5 से 10 मिनट और हैं। अच्छा, इस सिलसिले में जो एक और अहम तरीन नुक्ता है वो आपकी खिदमत में अर्ज करूँ। इस वक्त कितनी ख्वाहरान यहाँ पर होंगी मुझे अंदाज़ा नहीं है कि कितनी ख्वाहरान हैं और उनका लेवल क्या है, जूनियर हैं, सीनियर हैं, क्या हैं। लेकिन अगर वो मुझे इल्म हो जाता तो आसानी रहती मुझे। तादाद इतनी अहम नहीं है, लेकिन उनका जूनियर और सीनियर के लिहाज से जो आपने उसको तकसीम किया है उसका जानना मेरे लिए ज़रूरी है। यकीनन जो जूनियर ख्वाहरान हैं, हमारी नई ज़ाकरात हैं, उनके लिए बहुत से मतालब नए हो सकते हैं। और जो सीनियर खौरान हैं जो सुनती रही हैं और मजालिस पढ़ते हैं, यकीनन उनके लिए शायद तकरारी हो या कोई एक दो नुक्ता कोई ऐसा हो कि जो बहुत उनके लिए नया हो, वाला बहुत से मौजूद तकरारी हो सकते हैं। और यकीनन इसमें जो है हमें इन तकरारी मौजूद से नहीं घबराना चाहिए कि आवाज़ आपने वही तकरारी बातें की हैं। ये ख़ुद मेरे लिए भी जो है वो एक इआदा होता है, रिविज़न होता है मेरे लिए भी। यानी जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ ये मेरे लिए भी एक लेक्चर और दर्स है। और जब ये अपलोड होगा मैं खुद सुनता हूँ, मैं खुद देखता हूँ, हत्ता कि अपनी मजालिस को मैं खुद रिकॉर्ड करने के बाद भी सुनता हूँ। और ऐसा भी होता है कि जो अशरे होते हैं आज की गुफ्तगू जो हुई है उसको आके सुनता हूँ, फिर उसमें जो कमी बेशी रह जाती है उसको अगली मजलिस में मुंतकिल करता हूँ ताकि वो कमी बेशी दूर हो जाए। ये काम आपको भी करना चाहिए, अपने मोबाइल में कम से कम रिकॉर्ड करें, ठीक है ना। आपके पास अपनी मजालिस का डेटा होना चाहिए, किसी भी तरीके से आप उसको अपने मोबाइल में या किसी और डिवाइस में सेव करें, ये बहुत अच्छा है आपके लिए। जगह का तायुन, तारीख का तायुन, ठीक है ना, मौजू का तायुन, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। मजलिस अव्वल है तो उसमें क्या मौजू थे, मजलिस दुवम है उसके क्या ज़ेली मौजूद थे, एक मौजू और टॉपिक आपका मजमू अशरे का एक ज़ेली मौजूद हैं, ये सब आप इसको अपने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर सकते हैं, रख सकते हैं। फिर आपको ये मौका मिलेगा कि आप जो है अपनी गलतियों की तरफ मुतवज्जो हों, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मुसलसल आ रही होती हैं और आपने बताया 50 मिनट 45 मिनट 30 मिनट में سمیٹنا ہوتا ہے موضوع کو. تو بعض اوقات جو ہے وہ ڈسٹربینس ہو رہی ہوتی ہے, آپ موضوع آپ کے ذہن سے نکل جاتا ہے, ڈور آپ کے ہاتھ سے چھڑ جاتی ہے, پھر بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے, ایک نیا موضوع آیا, ایک نئی بات آئی, آپ نے کہا چلو اس کو بیان کر دوں, بعد میں اپنی بات کو کنٹینیو کروں گی, وہ بات رہ جاتی ہے. الغرض یہ کہ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں, لیکن جب آپ ریکارڈ ہوگی آپ کے پاس تو پھر آپ سنیں گے اور پھر وہاں پہ نوٹ کریں گے کہ اچھا یہ نقطہ رہ گیا تھا, یہ نقطہ رہ گیا تھا, فلاں بات نہ انکمپلیٹ ہے, نامکمل ہے, تو اس کو جو ہے وہ اگلے دن ڈلیور کیا جا سکتا ہے کہ کل ہماری گفتگو اس موضوع پہ ہو رہی تھی. ورنہ کیا ہے کہ وہ اگر آپ نے اس کو نہیں کنسیڈر کیا اور اپنی ادھوری بات کو آپ نے کنسیڈر نہیں کیا, گزر گئے, تو وہ ہمیشہ چپتا رہے گا. اچھا, ہماری چونکہ مجالس میں سوال جواب نہیں ہوتے ہیں, لہذا سامعین میں سے اگر کوئی مثلا سوال بھی کرنا چاہے گا تو وہ شرم اور جھجھک کی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہوتا, ہمارے مزاج بھی سوالات کرنے کا مولانا سے پہلے, مجلس سے پہلے, مجلس کے بعد, یا ٹائم کی کمی ہوتی ہے بعض اوقات ذاکرین کے پاس, ذاکرات کے پاس, تو وقت نہیں ہو پاتا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ روش جو ہے یہ بہت زیادہ مفید ہے, کارآمد ہے, اور اگر کہیں غلطی ہوئی ہے, سہون لکڑا کا زبان ہوا ہے, تو اس کی اگلے دن تصدیق کی جا سکتی ہے. تو یہ ضروری ہے کہ اس کو ریکارڈ کیا جائے, اپنے پاس رکھا جائے, اور اس کا ایک ڈیٹا آپ کے پاس ہونا چاہیے, اور اگر کہیں مثال کے طور پر آپ سمجھتے کہ مفید ہے تو اس کو اپلوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. بہرحال کوئی حرج نہیں ہے اس میں, اس کی تمام جو شرائط ہیں کہ نامحرم جو ہے وہ آپ کی آواز کے سننے کے جو مسائل ہیں وہ آپ کے پیش نظر ہونے چاہیے. تو موضوع کے عنوان سے ہو رہا تھا, موضوع میں ایک اور چیز جو ضروری ہے وہ ذہنی سطح کا انتخاب ہے. اب مولانا یہ بتائیے کہ ہم ذہنی سطح کا کیسے انتخاب کریں. اب ہمیں کہا ہے کہ جناب آپ نے جو ہے فلاں جگہ عشرہ پڑھنا ہے, فلاں جگہ مجلس پڑھنی ہے. میں جو مجلس پڑھتا ہوں کہیں بھی جاتا ہوں, پوچھتا ہوں گھر میں ہے مجلس یا باہر ہے, یعنی امام برگاہ میں یا گھر میں. اگر گھر میں تو گھر کے اندر ہے یا گھر کے باہر ٹینٹ لگا ہے. اگر گھر کے باہر ٹینٹ, اگر گھر کے اندر ہے تو لاؤڈ اسپیکر جو لگے ہوں باہر آواز آ رہی ہے, گھر کے اندر ہے, ٹھیک. اس کے بعد جو ہے اگر گھر کے باہر ٹینٹ لگا ہے تو اطراف میں آبادی کیسی ہے, سنی ہیں, شیعہ ہیں, آپس میں کوئی وہاں پہ جھگڑا تو نہیں ہوا ہے, وہاں پہ وہابی مسجدیں کتنی ہیں, سپاہ صحابہ کی مسجدیں کتنی ہیں, اہل سنت کتنے ہیں, ان کا بیہیویئر کیا. آپ سے میں پوچھتا ہوں, ایک مجلس بھی ہوتی پوچھتا ہوں تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ میں کس پہ مجلس پڑھنے جا رہا ہوں. پتہ چلا میں ایک جگہ پہنچا اور میں نے جا کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور جنگ خیبر فتح کر کے آ جاؤں میں, پتہ چلا میرے بعد جو ہے میں تو آ گیا, میرے بعد جو ہے مشکلات پیش آئیں. تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ہم عقیدہ لوگوں میں جا رہے ہیں یا اپنے عقیدے سے مد مقابل لوگوں کے سامنے جا رہے ہیں. حتیٰ آپ تشیع میں بھی آپ کو مجالس میں ایسے افراد ملیں گے جو آپ کے ہم عقیدہ نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, شہادت ثالثہ کے عنوان سے یا غلو اور غالی کے عنوان سے, وہ بہت سے لوگ آپ کے ہم عقیدہ نہیں ہیں. ایک اور چیز جو موضوع کے اعتبار سے ضروری ہے اور اس کو ہم نے ابھی پچھلے سال اپلائی کر کے بھی دیکھا, بعض نعروں سے ہمیں حساسیت نہیں ہونی چاہیے, اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے. ریجڈ نہیں بنے, ٹھیک ہے, اور ضدی نہیں بنے, ہٹ گرم نہیں بنے, ہر چیز پر فتویٰ فوراً مت لگائیں یہ غلو ہے, پہلے سوچیں سمجھیں اس کے بعد پھر بولیں. ہر ایک کو غالی مشرک نہ کہیں, ہر ایک کو غالی مشرک نہ کہیں. مثلاً آپ کو خدمت کروں, ایک شخص شہادت ثالثہ پر زور دیتا ہے مثلاً کہ نہیں پڑھنی چاہیے پڑھنی چاہیے, اب بیچارے تک یہی دین پہنچا ہے مثلاً, اب آپ کہیں تو جو ہے وہ کون ہے, تو غالی ہے. غالی ہونا الگ ہے, نماز میں شہادت ثالثہ پڑھنا تشہد میں الگ ہے, تو نصیری ہے مثلاً, تم نصیری ہو, قوم نصیری تو اللہ کی نماز نہیں پڑھے گا, خدا پرست پڑے گا, وہ واحد پڑے گا, مسلمان پڑے گا, شیعہ پڑے گا, نصیری تو نہیں پڑے گا نا. لہذا فوراً مت کہیں کہ تم نصیری ہو, یہ فوراً سے جو ہے نا اس سے کیا ہے ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے, اور لوگ آپ کی اچھی بات کو بھی قبول نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ اپنی بات کو اس طریقے سے بیان کریں, ہم ایک جگہ ملتان میں گئے, ہم نے ایک جگہ مجلس پڑھی, وقت پورا ہو رہا ہے, تو ہم نے اپنی گفتگو ایسے شروع کی کہ وہ افراد جو غلو کی طرف مائل تھے और मसलन उलमा को नहीं सुनते थे, जाकिरीन को सुनते थे। उनमें शख्स खड़ा हो, उसने कहा आवा साहब, हम आपके इस लिबास को जो आपने मौला का पहना है उसकी कदर करते हैं, और आपने जिस तरह विलायत को बयान किया हमने आज तक नहीं सुना। मुझे खुशी भी अफसोस भी हुआ। खुशी इस बात से हुई कि क्यों इन तक नहीं बात पहुंची, अफसोस ये हुआ कि मुझसे पहले जो पढ़ने आए थे मसलन उन्होंने ऐसा क्या पढ़ दिया कि इनको बददिल कर दिया। कहता मौजू का इंतखाब जो है उसमें इस चीज़ का ज़रूरी है कि इस मौजू को डिलीवर कैसे करना है। मौजू के इंतखाब के साथ साथ उसकी डिलीवरिंग जो है, उसका इलका जो है, उसको मुंतकिल करने का मरहला जो है, वो बहुत ज़्यादा अहम है। बस मेरी दरख्वास्त ये वक्त तमाम हो गया कि मौजूआत को लें, उस पर डिस्कस करें। वक्ती मौजूआत, कुल्ली मौजूआत, अखलाकी मौजूआत, इज्तिमाई मौजूआत, ठीक है ना, करबला के मौजूआत, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करें। आप एक ग्रुप होना चाहिए, मुबाहसा करें, एक दूसरे को नोट्स दें, एक दूसरे को जो है वो अपने मफाहिम को पहुँचाएँ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी तमाम सही और ज़हमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और हम सबको खुलूस नीयत के साथ, खुलूस बहुत ज़रूरी है, खुलूस नीयत के साथ इमाम हुसैन की अदादारी करने की तौफीक अता फरमाए। यही खुलूस की अदादारी जो है वो रोज़ क़यामत हमें शफ़ात के दर तक ले जाएगी इंशाल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।